ग्रंथ श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 2 से 7 तक बोर्ड पर श्लोक संख्या 7 लिखे हैं, तो इसका उच्चारण करेंगे। युत्सताम कुत्रचिदादितायनाम जया सदैकत्र नावै परात्मनाम विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरम् सर्वज्ञमादयम् पुरुषम् सनातनम् युत्सताम् कुत्रचिदाततायिनाम् जया सदैकत्र नावै परात्मनाम् विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरम् सर्वज्ञमाद्यम् पुरुषम् सनातनम्। बोला सकते हैं। धन्यवाद। शब्दार्थ अर्वं एवं तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की युत्सताम यु युद्ध के लिए उत्सुक हैं, कुत्रचित कभी कभी आततायनाम आयुधों से लेस जय विजय सदा सदैव एकत्र एक स्थान में ना नहीं वै निसंदेह पर आत्मानम अधीन जीवात्माओं का जो परमात्मा के निर्देश में कार्य करती हैं बिना के अतिरिक्त एकम एक उत्पत्ति सृष्टि लय संगार स्थिति तथा पालन का ईश्वरम नियंता सर्वज्ञम जो सब कुछ भूत वर्तमान भविष्य जानता है आद्यम आदि पुरुषम भोक्ता सनातनम नित्य। अनुवाद। वृतासुर ने कहा हे इंद्र, आदि भोक्ता श्री भगवान के अतिरिक्त किसी की विजय निश्चित नहीं है, वे ही उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय के कारण हैं और सब कुछ जाने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देह धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजय होते हैं तो कभी पराजय होते रहते हैं। तात्पर्य भगवद गीता 15:15 में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्नविष्टो मता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझी में स्मृति ज्ञान और स्मृति उत्पन्न है। जब दो पक्ष लड़ते हैं तो लड़ाई वास्तव में परमात्मा स्वरूप श्री भगवान के निर्देशन में होती है। भगवान गीता 3:27 में अन्यत्र कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार से मोहित जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। जीवात्माएं परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्य करती हैं। भगवान भौतिक प्रकृति को आदेश देते हैं और वह जीवात्माओं के लिए समस्त सुविधाओं की व्यवस्था करती है। जीवात्माएं कभी भी स्वतंत्र नहीं होती, यद्यपि अज्ञानवश वे अपने को ही कर्ता समझ बैठती है। विजय तो सदैव श्री भगवान के पक्ष की होती है, अधीनस्थ जीवात्माएं तो श्री भगवान की व्यवस्था के अंतर्गत लड़ती हैं। विजय या पराजय वस्तुतः उनकी नहीं होती, यह तो प्रकृति के माध्यम से भगवान की व्यवस्था के द्वारा होती है। विजय पर गर्व या हार पर शोक करना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान पर पूरी तरह से आश्रित रहे, क्योंकि वही समस्त जीवात्माओं की विजय तथा पराजय के लिए उत्तरदायी है। भगवान का आदेश है नित्यम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याहि अकर्मणा, तुम अपना कर्तव्य करो क्योंकि निष्कर्म से कर्म श्रेष्ठ है। जीवात्मा को अपनी स्थिति के अनुसार कर्म करने का आदेश मिलता है। जय या पराजय तो परमेश्वर पर निर्भर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हें कर्म करने का अधिकार है किंतु तुम कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। मनुष्य को चाहिए कि अपनी स्थिति के अनुसार निष्ठापूर्वक कर्म करे। जय या पराजय तो भगवान के हाथ में है। वृतासुर ने इंद्र को यह कहकर प्रोत्साहित किया मेरी विजय से तुम दुखी मत हो, युद्ध बंद करने की आवश्यकता नहीं है, तुम अपना कर्तव्य करो, जब श्री कृष्ण चाहेंगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। कृष्णा भानमित आंदोलन के कार्यकर्ताओं के लिए यह श्लोक अत्यंत शिक्षाप्रद है। विजय पर हमें ना तो प्रसन्न होना चाहिए ना हार पर दुखी। हमें श्री कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को कार्य रूप में परिणित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। हमें जीत अथवा हार की परवाह नहीं करनी चाहिए। हमारा एकमात्र कर्तव्य है निष्ठापूर्वक कर्म करना, जिससे श्री कृष्ण हमारे कार्यों को मान्यता दें।
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का आज के इस प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आप में से काफी भक्त ये आशा लेकर आए होंगे कि आज हमें परम पूजनीय राधा गोविंद महाराज जी के मुखारविंद से कुछ सुनने को मिलेगा। दुर्भाग्यवश प्रातःकाल लगभग 6:15 बजे फोन आया कि महाराज का रात को पलवल में कार्यक्रम था, तो महाराज का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था, तो उनको नर्सिंग होम में जाना पड़ा। तो हमारे लिए दुख की बात है और हम लोग एक बार इस सब श्री राधा राधिकमन जी के चरण में प्रार्थना करते हैं कि महाराज का स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो और हम महाराज से बहुत लंबे सदक श्रवण करते रहे, उनका संग करते रहे, अपने आप को शुद्ध करें। तो एक बार सब भक्त लोग हृदय से उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो राधा गोविंद महाराज की, तो किसी ढंग से आपको सहन करना पड़ेगा। मुझे आज के श्लोक के प्रभुपाद बता रहे हैं कि जय और विजय पे हमारा हाथ नहीं है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। तो आप लोगों ने प्रयास किया, कक्षा के लिए आए, और श्रोता कौन बैठेगा ये राधा राधिकरण की इच्छा पर निर्भर था। तो हम लोग महाराज से याचना करते हैं कृपा की और इस श्लोक पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये श्लोक बहुत ही शिक्षाप्रद है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत सुंदर सुंदर हमें आदेश दे रहे हैं। इससे पहले हम श्लोक नंबर 2 से लेकर 6 तक के अनुवाद पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें कि क्या प्रसंग चल रहा है। आप में जो भक्त प्रतिदिन कक्षा में नहीं आ रहे तो उनको बताना चाहेंगे कि इस समय युद्ध का दृश्य है। वृत्तासुर और इंद्र के देवताओं के बीच में युद्ध हो रहा है। वृत्तासुर वास्तव में है वो असुर, लेकिन वो भगवान के बहुत उत्तम भक्त हैं। वृत्तासुर वास्तव में राजा चित्रकेतु हैं। राजा चित्रकेतु जब अंगिरा ऋषि और नारद मुनि से भेंट करते हैं और फिर भगवान की बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हैं, तो उनकी उन्हें भगवान दर्शन देते हैं। और भगवान से वार्तालाप के बाद जब वो आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं तो कैलाश पर्वत पर किसको देखते हैं? भगवान शिव पार्वती माता को अपने गोद में बिठाकर भागवत कथा कर रहे हैं। तो राजा चित्रकेतु भक्तों की इस महिमा को देखकर मुस्कुराते हैं और पार्वती माता इसको अपराध के रूप में लेती हैं और राजा चित्रकेतु को श्राप दे देती हैं कि आप अगले जन्म इस असुर योनि में जाएंगे। तो राजा चित्रकेतु कोई प्रोटेस्ट नहीं करते, चुपचाप इसको भगवान की इच्छा मान के स्वीकार कर लेते हैं। तो वास्तव में बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं राजा वृत्तासुर। और दधीचि मुनि के हड्डियों से बना हुआ वज्र इंद्र के हाथ में है और देवताओं के असुर के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो भगवान विष्णु देवताओं के सामने प्रकट होकर उनको बताते हैं कि अगर आप दधीचि मुनि के हड्डियों से बने हुए अस्थियों से बने हुए वज्र से अगर वृत्तासुर पर आघात करेंगे, उसका वध करेंगे, तो आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। सब भक्त लोग थोड़े अंदर आगे आ सकते हैं, कुछ लोग भक्त लोग बाहर खड़े हैं, थोड़ा अंदर आने का प्रयास कर लीजिए। तो वृत्तासुर और इंद्र के बीच में युद्ध चल रहा है। अब देखिए, दोनों ही भक्त हैं, इंद्र भी भक्त हैं और वृत्तासुर भी भक्त हैं। इंद्र ने भगवान से प्रार्थना की मुझे मेरी असुरों से रक्षा कीजिए। तो भगवान ने उनको उपाय बता दिया कि आप दधीचि मुनि के पास जाकर उनसे निवेदन कीजिए और उनकी अस्थियों से एक वज्र बनाइए। और उधर से इंद्र चाहते हैं कि इस युद्ध में हम विजय प्राप्त करें और वृत्तासुर भी यही चाहते हैं कि इंद्र उनका वध करें ताकि वो भगवत धाम शीघ्र वापस जा सके। तो दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों ही युद्ध में जीत जाएंगे। श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के। तो फिर भी इंद्र थोड़े हिचकिचा रहे हैं वृत्तासुर पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि इंद्र जानते हैं कि वृत्तासुर एक शुद्ध भक्त है। तो ये अध्याय जब प्रारंभ होता है तो पहले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि अपने शरीर छोड़ने की इच्छा से वृत्तासुर ने विजय की अपेक्षा युद्ध में अपनी मृत्यु को श्रेयस्कर समझा। हे राजा परीक्षित, उसने अत्यंत बलपूर्वक अपना त्रिशूल धारण किया और बड़े वेग से स्वर्ग के राजा पर उसी प्रकार से आक्रमण किया जिस प्रकार ब्रह्मांड के जलमग्न होने पर कैटभ ने श्री भगवान पर बड़े ही बल से आक्रमण किया था। मृतासुर हालांकि चाहते हैं कि युद्ध में उनकी हत्या हो जाए, लेकिन वो इंद्र को और इंद्र का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं कि इंद्र उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करें और उनका वध जल्दी करें। इसलिए युद्ध क्षेत्र में मृतासुर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हिजोर शिवराम स्वामी महाराज अब यहां पर आए थे, उन्होंने एक बहुत सुंदर बात हमें बताई थी सबको कि कृष्ण कॉन्शियस होने से पहले कम से कम हमें ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। तो मृतासुर भगवाधाम जाना चाहते हैं, युद्ध में हैं, तो युद्ध में पहले अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। ऐसे नहीं कह रहे चलो मार दो मुझे, ऐसे नहीं खड़े, पूरा उत्साह से लड़ रहे हैं, त्रिशूल फेंका इंद्र के ऊपर। आगे हम देखेंगे कितने उत्साह से मृतासुर लड़ रहे हैं, बल्कि इंद्र बहुत शोक में चले जाएंगे, इंद्र युद्ध के लिए इतने लड़ाई नहीं होंगे, लेकिन मृतासुर उसका उत्साह बढ़ाएंगे कि युद्ध करो उठो। तो उन्होंने बहुत जोर से वेग से त्रिशूल फेंका, तब असुरों के परम वीर मृतासुर ने प्रलय की धधकती अग्नि के लपटों के समान तीखी नोकों वाले त्रिशूल को अत्यंत क्रोध एवं अत्यंत वेग से इंद्र पर चला दिया। उसने गरज कर कहा, अरे पापी मैं तेरे वध किए देता हूं। केवल बोल रहे हैं ऐसे, है ना, वो चाहते हैं कि इंद्र उनका वध करे, लेकिन इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए बोले, अरे पापी मैं तेरे वध के लिए आया हूं। तीसरे श्लोक में आकाश में उड़ता हुआ मृतासुर का त्रिशूल प्रकाशमान उल्का के समान था, यद्यपि इस प्रज्वलित आयुध की ओर देख पाना कठिन था, किंतु राजा इंद्र ने निर्भीक होकर अपने वज्र से उसके खंड खंड कर दिए। उसी समय उसने मृतासुर की एक भुजा काट ली जो सर्वों के राजा वसुकी के शरीर के समान मोटी थी। उसने क्या किया, इंद्र ने वज्र से त्रिशूल को काट दिया और मृतासुर की एक बाजू भी काट दिया। शरीर से एक भुजा के छिन्न हो जाने पर भी मृतासुर क्रोध पूर्वक राजा इंद्र के निकट पहुंचा और लोहे के बल्लम परीक से उसने ठोड़ी पर प्रहार किया। किसकी ठोड़ी पर, इंद्र की। उसने इंद्र के हाथी पर भी प्रहार किया, इससे इंद्र के हाथ से उसका व्रज छूटकर गिर पड़ा। इंद्र के हाथ से उसका व्रज छूट गया। विभिन्न लोकों के वासी यथा देवता असुर चारण तथा सिद्ध मृतासुर की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे, किंतु जब उन्होंने देखा कि इंद्र संकट में है तो वह हाय हाय करके विलाप करने लगे। शत्रु की उपस्थिति में अपने हाथ से व्रज गिर जाने पर इंद्र अत्यंत लज्जित हुआ और एक प्रकार से पराजित हो गया। उसने पुनः अपना आयुध उठाने का दुस्साहस नहीं किया, किंतु मृतासुर ने उसे प्रोत्साहित करते हुए कहा, अपना व्रज उठा लो और अपने शत्रु को मार दो, यह भाग्य को कोसने का अवसर नहीं है। उसके बाद फिर आज का श्लोक है। आज के श्लोक में मृतासुर ने कहा, हे इंद्र, आदि भोक्ता श्री भगवान के अतिरिक्त किसी की विजय निश्चित नहीं है, वे ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है और सब कुछ जानने वाले हैं। अधीन होने तथा भौतिक देह धारण करने के लिए बाध्य होने के कारण युद्ध प्रिय अधीनस्थ कभी विजय होते हैं तो कभी पराजय होते रहते हैं। तो मृतासुर इस श्लोक में इंद्र का उत्साह बढ़ा रहे हैं। इंद्र हिम्मत हार गए थे, वो दोबारा दुस्साहस नहीं कर रहे थे, उनके हाथ से व्रज गिर गया था, तो कैसे मैं व्रज को उठाऊं। तो मृतासुर कह रहे हैं कि आप चिंता मत करो, ये समय अब शोक मनाने का नहीं है, और आप उठिए, इस व्रज को उठाइए और मुझे प्रहार कीजिए। ये मत सोचिए कि जय और विजय आपके हाथ में है। जय किसकी होती है, हमेशा परम नियंता की, परमात्मा की, क्योंकि वो सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं और पालन करते हैं, और वो सब कुछ जानते हैं, वर्तमान भविष्य और भूतकाल। और जो वध जीव है वो अधीनस्थ है और वो कभी जीतेगा और कभी हारेगा। इस संसार में हम लोग जो भी कार्य करना करते हैं, हम लोग उस कार्य में सफल होना चाहते हैं, सीख बात है ना। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई ऑफिस में जाता होगा सर्विस क्लास व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जो भी कार्य करे उसमें वो सफल हो जाए, उसमें वो जीत जाता है। तो वास्तव में सफलता और जीत का क्या अर्थ है, हम किसको सफलता बोलेंगे, किसको विफलता मानेंगे, कब बोलेंगे हम जीत गए और कब हम सोचेंगे हम हार गए। कृष्ण चैतन्य प्रभु की जय, वेलकम यू प्रभु। तो कब हम सोचेंगे हम जीत गए और कब हम सोचेंगे हम हार गए, क्या हमारे लिए जीत है, क्या हमारे लिए हार है। बहुत ऊंची परिभाषा दी आपने, लेकिन डे टू डे लाइफ में किसको जीत मानते हैं, किसको हार मानते हैं, हाँ बहुत ही अच्छा उन्होंने बताया, जब हमारे मन की इच्छा पूरी हो जाए, जिस अभीष्ट के साथ हम कर्म शुरू करते हैं, अगर वो पूरा हो जाए हम सोचते हैं हम जीत गए, और हमारा अभीष्ट हमारी इच्छा पूरी ना हो तो हम सोचते हैं हम हार गए, हम शोक मनाते हैं। तो देखा जाए जब हमारी इच्छा पूरी हो जाए हम सोचते हैं हम जीत गए, और इस संसार में हर व्यक्ति जीतना चाहता है, तो क्या संभव है कि हर व्यक्ति जीत जाए? इसलिए क्या हो रहा है, इस संसार में स्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति जीतना चाहता है। जब हम बचपन में थे कॉम्पिटिशन की तैयारियां करते थे, कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू आता था एक मैगजीन का, कि कैसे कॉम्पिटिशन में सक्सेस पाए हैं, और हमारा यही उद्देश्य होता है बस आगे बनना है। कॉम्पिटेटिव स्पिरिट, आप किसी कंपनी को भी ज्वाइन करते हैं, किलिंग स्पिरिट होना चाहिए, मार दो दूसरे को, काट दो गला उसको और आगे बढ़ो, किलिंग स्पिरिट, कॉम्पिटेटिव स्पिरिट। तो जीव जीवस्य भोजनम, इस संसार में प्रत्येक जीव दूसरे जीव का भोजन है। हम जाते हैं बाहर प्रकृति में, सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं, लेकिन उन सुंदर दृश्यों के पीछे हम जानते नहीं कितनी लड़ाइयां चल रही हैं। एक छोटे कीड़े को बड़ा कीड़ा खा रहा है, बड़े कीड़े को छोटा पक्षी खा रहा है, छोटे पक्षी को बड़ा पक्षी खा रहा है, बड़े पक्षी को एक छोटा पशु खा रहा है, छोटे पशु को बड़ा पशु खा रहा है, बड़े पशु को एक व्यक्ति मार रहा है, उस व्यक्ति को समय मार रहा है। तो इस संसार में प्रत्येक जीव दूसरे जीव पर उस पर आघात करके जीतना चाहता है। समुद्र में जाते हैं बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है, लेकिन समुद्र के अंदर कितने कॉम्पिटिशन चल रहे हैं, छोटी मछली को बड़ी मछली, बड़ी बड़ी को उसको बड़ी मछली, और फिर एक मछुआरा आता है सबको पकड़ के ले जाता है। देखिए हर कोई एक दूसरे पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन श्रीमद् भागवतम के ग्यारहवें स्कंद में भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि जो बद्ध जीव हर कार्य जीत के प्रयास से शुरू करता है उसका परिणाम क्या होता है। बोला गया है कि एक विशुद्ध आत्मा ये देख सकता है कि जो बद्ध जीव जो कि इंद्र तृप्ति के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं, और जो कि समझते हैं कि उनके इंद्रियों के विषय ही सत्य हैं, उनके सारे के सारे प्रयास निश्चित रूप से विफल हो जाएंगे। बद्ध जीव के सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। ये किसी निराशावादी व्यक्ति का कहना नहीं है जिसके लिए अंगूर खट्टे हों ऐसा बोल रहा हो, ये किसके वचन है, भगवान श्री कृष्ण के उद्धव को, जिन्होंने सृष्टि की रचना की। सर्वारंभ विप्रयम, सर्वारंभ सारे के सारे प्रयास बद्ध जीव के विफल हो जाएंगे, ये भगवान कह रहे हैं। जो कि भगवान ने गीता में कहा है कि दुखालयम अशाश्वतम, भगवान ने सृष्टि की रचना इस ढंग से की है कि हम जितना मर्जी प्रयास कर लें इस सृष्टि में अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, हमारे प्रयास सभी विफल हो जाएंगे। इसलिए कोई बड़े से बड़ा भी विजेता क्यों ना हो, अंततः उसको हार माननी पड़ेगी। चाहे हिटलर हो, चाहे नेपोलियन हो, सद्दाम हुसैन हो, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट हो, अलेक्जेंडर द ग्रेट जो जीता वो सिकंदर, और जिसने सिकंदर को मारा वो है मच्छर, है ना। आप देखिए क्या विडंबना है संसार की। भक्ति सिद्धांत सरठा कुमार महाराज कहते हैं, अगर इस संसार में कोई भोग करने का प्रयास कर रहा है, धार्मिक दृष्टिकोण से या अधार्मिक दृष्टिकोण से, इसमें हमेशा ही विपरीतता है, फुल ऑफ कंट्राडिक्शंस। अलेक्जेंडर पूरे विश्व को जीत गया, लेकिन पंजाब के मच्छर ने उसको हरा दिया। पंजाबी वाक्य मच्छर ने नहीं, पंजाब के, पंजाब में गया तो उसको मलेरिया हो गया, बेचारा मर गया। वैसे वो मच्छर भी नहीं था जिसने अलेक्जेंडर को मारा, एक मच्छरी थी, फीमेल मच्छर। मच्छर भी होता चलो ठीक बात है, कितनी अपमान की बात है। आप देखिए क्योंकि बायोलॉजी में जीव विज्ञान बताते हैं कि मलेरिया जो है वो फीमेल एनोफिलिस से होता है, मच्छर का नाम शायद सही करें जो स्टूडेंट्स होंगे जानते होंगे। तो एक मादा मच्छर है वो मलेरिया के कीटाणुओं को लेकर दूसरे के ब्लड में डालती है। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट एक मछली के आगे, पंजाबी मछली के आगे ध्वस्त हो गए। एक जीव दूसरे जीव को मार रहा है, जब उस मछली ने आक्रमण किया होगा उसको नहीं मतलब अलेक्जेंडर द ग्रेट है, बड़े बड़े राजाओं को हरा के आया हुआ है, उसके लिए तो ये अभी खत्म करती है उसको, है खट से फिनिश। ये संसार की रचना है। कोई भी बद्ध जीव अपने प्रयासों में सफल नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि दुखद समाचार यह है कि हम भगवान नहीं हैं। हर परिस्थिति में केवल भगवान ही विजय होते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं जब दो पार्टीज लड़ रही हैं तो सोच रहे हैं कि मैं जीत गया मैं हार गया, वास्तव में भगवान जीतते हैं। भगवान ऐसी परिस्थितियां कर देते हैं कि कोई जीतता है तो कोई हारता है, जो जीतता है वो खुश हो जाता है, जो हारता है वो शोक में चला जाता है। वास्तव में जीत किसी की नहीं हुई है, जीत किसकी हुई है? परमात्मा की, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञान मपोहनम च। तो परमात्मा सबको बुद्धि देते हैं और उसके द्वारा वो कार्य कराते हैं, जिससे कोई जीतता है और जो नहीं जीतता। तो हम पूर्ण रूप से अधीन हैं, पूर्ण रूप से अधीनस्थ हैं, और जब तक हमारे पास ये शरीर है हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं, अपने भोजन के लिए, पानी के लिए, वायु के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए भी हम पूर्ण रूप से निर्भर हैं, हम अपने इमोशंस के लिए भी पूर्ण रूप से निर्भर हैं। हम जानते हैं कोई हमारे सामने आए और हमारे साथ गलत व्यवहार करे, हम दुखी हो जाते हैं। आपने किसी को हंस के हरे कृष्णा बोला और सीधा निकल गया, आप पूरा महीना सोचते रहेंगे क्या हो गया, ऐसे क्या हो गया, क्यों उसने प्रणाम नहीं किया, क्यों वो हंसा नहीं, वो हमेशा ऐसे करता है, मैं ऐसा करता हूं। कोई हमसे थोड़ा सा अपमान कर दे, थोड़े से हमसे हंस के बात ना करे, घर में थोड़ा सा कोई उल्टा सीधा बोल दे, हम कितने दुखी हो जाते हैं। तो हम कितना निर्भर हैं, छोटी छोटी बातों पर हम दूसरों पर निर्भर हैं, पूर्ण रूप से हमारा जीवन दूसरों पर निर्भर है, हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते। प्रकृति के निर्माणी गुणेश कर्माणी सर्वशा, हमेशा प्रकृति के तीन गुणों में है। हमारी इतनी दुर्गति है फिर भी अहंकार अविमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। कोई थोड़ा सा हमें मुस्कुरा के ना देखे हम दुखी हो जाते हैं और हम सोच रहे मैं स्वतंत्र हूं, अहंकार अविमूढ़ आत्मा कर्ता, अपने आप को कर्ता मानता हूं। भगवान ने सारी सृष्टि की रचना की और भगवान करते मैं अकर्ता हूं। ये छोटा सा बद जीव बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा जो कि पूर्ण रूप से निर्भर है वो सोचता है मैं करता हूं, विमूढ़ आत्मा। प्रभु कहते हैं विशेष क्लास, स्पेशल क्लास ऑफ मूर्ख, इससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। प्रभु जी बोलते हैं अहंकार के दो लक्षण होते हैं, दो पहलू होते हैं, क्या? मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। अहंकार, मैं करता हूं क्योंकि मैंने किया है तो इसका जो परिणाम है मैं ही भोगूंगा। लेकिन हम जानते नहीं, हम पूर्ण रूप से हर परिस्थिति में भगवान की कृपा पर निर्भर हैं। अगर हमें दूसरों पर निर्भर रहना ही है तो क्यों ना हम हर परिस्थिति में कृष्ण पर निर्भर रहें। हम शक्ति हैं, हम शक्तिमान नहीं हैं, हमें आश्रित ही रहना है। तो जब आश्रित ही रहना है तो क्यों नहीं हम कृष्ण का आश्रय ग्रहण करें। जब हमेशा कृष्ण पर निर्भर रहेंगे तो हमेशा विजयी रहेंगे। दूसरों पर निर्भर रहना, दूसरों पर मोहताज रहना सबसे बड़ी हार है, और कृष्ण पर निर्भर रहना सबसे बड़ी विजय है। यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर धुआ नितिर मतिर ममा। अर्जुन केवल कृष्ण पर निर्भर रहा, उसकी विजय हुई। दुर्योधन भगवान की सेना पर निर्भर रहा, अपनी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहा, उसकी पराजय हुई। तो हम देख सकते हैं जब हम कृष्ण पर निर्भर रहेंगे तो हमेशा विजय को प्राप्त करेंगे। वास्तव में हमें जानना चाहिए कि आध्यात्मिक जीवन में विजय क्या है और पराजय क्या है। कृष्ण पर निर्भर रहना ही विजय है। जब हम कृष्ण पर विजय होंगे, निर्भर होंगे, कृष्ण पर विजय नहीं होंगे, हम लोग भगवान के सामने आते हैं भगवान बनने के लिए, है ना। आते हैं हम लोग यहां पर कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि मुझे संसार में सुखी बना दो, मेरा बिजनेस प्लान ठीक करा दो। तो क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम विजयी हो जाएं भगवान से अलग होकर, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे भगवान बना दो। भगवान का प्रयोग कर रहे हैं भगवान बनने के लिए। भगवान भी मुस्कुराते होंगे खेड़े में से, ठीक है आप बोलते जाओ। भगवान की कितनी विनम्रता आप देखिए, भगवान परमात्मा के रूप सबके हृदय में स्थित है, माल में कैसी कैसी इच्छाएं हैं और कैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान सब कुछ जानते हैं। और भगवान फिर भी, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है, अगर हम भौतिक इच्छाओं के साथ भी आते हैं तो भगवान धीरे धीरे हमें शुद्ध कर देते हैं। तो हम इस बात पे आ रहे थे कि हाँ, जब हम भगवान पर निर्भर रहते हैं पूर्ण रूप से तो हम भक्ति में हमेशा उत्साहित रहेंगे, भक्ति में हमेशा दृढ़ रहेंगे। उत्साह निश्चय धैर्य, रूप गोस्वामी बताते हैं कि भक्ति को हमें बहुत उत्साहपूर्वक और बहुत विश्वास के साथ भक्ति में कार्यों को करना चाहिए। लेकिन हम देख सकते हैं कि भक्ति में हमारा उत्साह बहुत ऊपर नीचे होता है, एक हार्ट पेशेंट के ईसीजी ग्राफ की तरह, देखते हैं ना ईसीजी कर्व कैसे होता है ऊपर नीचे। ऐसा क्यों, कोई बता सकता है? हम भक्ति में हम इतना फ्लक्चुएट क्यों करते हैं? किसी दिन तो लगते हैं पहुंच गया भगवत धाम, मेरे ऐसा कोई शुद्ध भक्त नहीं है, और किसी दिन लगते हैं कि सारी तरह की इंद्रजीत की इच्छाएं हमें घेर लेती हैं, कुछ करने का मन नहीं करता, भक्त भी अच्छे नहीं लगते, कोई प्रोसेस अच्छा नहीं लगता, और किसी दिन हमें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा क्यों? प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव में है, वास्तव में हमारी मनस्थिति पर निर्भर करता है और हम इस भौतिक जगत के द्वंद्वों में से बहुत प्रभावित हो जाते हैं। द्वंद्व का अर्थ है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, और भौतिक स्थिति में हमेशा ही चला रहता है। हम भव सागर में हैं, भव सागर में लहरें रहेंगी रहेंगी, सुख दुख की लहरें, सुख की लहर, दुख की लहर, कभी हम जीतेंगे कभी हम हारेंगे। तो इस द्वंद के कारण, ड्यूअलिटी के कारण हम अपना उत्साह खो बैठते हैं। तो इस द्वंद कैसे उत्पन्न होता है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतपः। भगवान गीता के सातवें अध्याय में अर्जुन को समझा रहे हैं, जब हम भगवान से विमुख होकर भोगना चाहते हैं, इस इच्छा और द्वेष के कारण हम इस द्वंद्वमय जगत में फंसते हैं। भोक्ता अपने आप को जब समझेंगे, अहंकार के कारण अपने को कर्ता समझेंगे और फिर अपने को भोक्ता मानेंगे, भोक्ता होने के कारण हम उस कार्य के परिणाम से आसक्त हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और जहां हम आसक्त होते हैं वहां भय उत्पन्न होता है, वहां चिंता उत्पन्न होती है, और जब परिणाम हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होगा तो हम दुखी हो जाएंगे। तो या तो हम बहुत सुखी होंगे या फिर हम शोक में चले जाएंगे। दोनों ही अवस्था में भक्ति में हमारी दृढ़ता कम हो जाती है। इसलिए भगवान गीता में बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायिना नित्य तांतिक्षस्व भारत। शिल प्रभुपाद कह रहे हैं इस तात्पर्य में, भौतिक सुखों में आनंद मनाना या दुख में शोक में चलना जाना दोनों ही बेकार है, व्यर्थ है। तो कोई बोल सकता है, अगर हमें कुछ संसार में सुख प्राप्त हो रहे हैं तो फिर उसको सहने की क्या आवश्यकता है? भगवान गीता में कह रहे हैं, सुख को भी सहो दुख को भी सहो। दुख को तो सहना कोई बात नहीं, सुख को सहने की बात क्यों कर रहे हैं? सुख को सहना चाहिए कि आनंद करना चाहिए? सुख को भी सहो और दुख को भी सहो, तो सुख को सहने क्या अर्थ है? हाँ, क्योंकि अगर हम भौतिक सुख को भी भोगेंगे तो हम कृष्ण को भूल जाएंगे, और बहुत दुख में शोक भी मनाएंगे तो भी कृष्ण को भूल जाएंगे। तो भक्त केवल यही चिंता होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति में मैं कृष्ण को ना भूलूं, इस संसार के सुख दुख से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। प्रभु कहते हैं वन शुड बी कैलस। कैलस क्या बोलेंगे हिंदी में? निर्दयी होना चाहिए एकदम, संसार के सुख दुखों से बिल्कुल विचलित नहीं होना। समुद्र की लहरों में है, समुद्र की लहरों में अपने को एडजस्ट करने का प्रयास ना करें, सीधा समुद्र से निकलने का प्रयास करें। अपने सारी के सारी शक्ति समुद्र की लहरों में एडजस्ट करने में लगा देंगे तो समुद्र से निकलने की शक्ति को खो बैठेंगे। कल ही प्रभुपाद जी का एक लेक्चर था, शुक्रवार को प्रभुपाद ये कह रहे थे, हमें जानना चाहिए संसार की असली समस्याएं क्या हैं। संसार की असली समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। संसार की असली समस्या बिजनेस में घाटा, घर में लड़ाई, इनकम टैक्स प्रॉब्लम, किश्तों की प्रॉब्लम, ये नहीं है संसार की। हमारी असली समस्या, हम जीवात्मा है, हम सनातन है, बार बार गर्भ में वास करना पड़ता है, बार बार जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, ये असली समस्याएं हैं। तो मनुष्य जीवन की पूरी के पूरे हर प्रत्येक क्षण पूरी शक्ति हमें इन समस्याओं के समाधान में लगानी चाहिए। शिल प्रभुपाद अपने तात्पर्य में समझाते हैं, इस संसार की रचना की गई है एक बद्ध जीव को यह अवसर देने के लिए कि वो नित्य बद्ध अवस्था से नित्य मुक्त अवस्था को प्राप्त करे और भगवान के साथ आकर रासलीला में भाग ले। ये भगवान का इस सृष्टि की रचना करने का योजना है, और हम लोग इस सृष्टि में आकर जिसमें कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और बहुत सीमित है, सनातन नहीं है ये मनुष्य देह, ये सीमित है, तदपि अध्रुवम अर्थदम, कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए इस मनुष्य शरीर की सारी शक्ति सारा समय हमें भगवत प्राप्ति के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मनुष्य देह दिया गया है। लेकिन क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ चीजें अर्जेंट होती हैं, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हम किसको महत्व देते हैं? अर्जेंट को, अर्जेंट चीजों को, बहुत आवश्यक है जल्दी जल्दी करो, उसके चक्कर में हम क्या होता है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको हम इग्नोर कर देते हैं और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पूरा समय ऐसे निकल जाएगा। तो इस संसार के सुख दुखों से, द्वंद से, भय से ऊपर उठने का एक ही तरीका है कि हम जाने कृष्ण परम नियंता हैं, विजय केवल कृष्ण की होती है, इस संसार के सुख दुख से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसके लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस में, भक्ति में बहुत गहराई चाहिए। हम देखते हैं अभी बारिश का मौसम है, वर्षा के मौसम में छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर जाता है, और जब पीछे वर्षा नहीं हो रही थी वो गड्ढे सूखे पड़े थे। लेकिन हम समुद्र में जाते हैं तो समुद्र में जब वर्षा नहीं हो रही थी तब भी भरा पड़ा था, जब वर्षा हो रही है तब भी भरा पड़ा है, क्योंकि समुद्र में गहराई है। इसी ढंग से जितने हमारी भक्ति में गहराई होगी, हम इन संसार के ऊपर नीचे से द्वंद्वों से विचलित नहीं होंगे। तो भक्ति में गहराई कैसे उत्पन्न की जाए? भक्ति में गहराई जानने का अर्थ है कि हमारे जीवन का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। प्रभुपाद जी भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि हमारे जीवन की अधिक सभी समस्याएं हमारे दूषित जीवन के लक्ष्य के कारण है। क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य दूषित है, पॉल्यूटेड है, इसलिए हम हर प्रकार के कष्ट भोगते हैं। और जीवन का लक्ष्य दूषित होने का अर्थ है भक्ति के साथ साथ भौतिक इच्छाएं रखना। बुरा मत माननीय, हम लोग भक्ति में कई सालों से भी जुड़े हैं, फिर भी हम क्या कब प्रसन्न होते हैं? जब हमें भौतिक लाभ प्राप्त हो जाए। कई बार लोग आते हैं, ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है, जो मेरी प्रॉपर्टी में प्लॉट लिया था उसका रेट बढ़ गया है, बड़े खुश हो जाते हैं, है ना। कई मेरे लोग इस बात पे आते हैं, बहुत खुशी की बात है, मैंने घर बनाने के लिए बैंक में लोन अप्लाई किया था, लोन सैंक्शन हो गया, कर्जा सैंक्शन हो गया, उसमें एक भक्त खुशी मना रहा है। प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए, हम खुशी मना रहे हैं। चलो जी, मेरी पहली संतान लड़की थी, दूसरा संतान लड़का हो गया, मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी, मैं खुश हो गया। देखिए हमारे क्या स्टैंडर्ड है, कितनी हमारी भक्ति में गहराई है। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मैं शोक में चले गई, सेवा में ढीलापन आ गया। मेरी पति से लड़ाई हो जाती है, पति जी का बिजनेस में लड़ाई हो रही है, तो सारे के सारे सेवा में ढीले। क्या हमारा हम कितनी हमारी गहराई हम देख सकते हैं। हम देखें कि हमारी इच्छाएं क्या हैं, हम किस बात से खुश होते हैं, किस बात से दुखी होते हैं, तो जानेंगे हमारी भक्ति में कोई गहराई नहीं है। क्योंकि जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो हमें भक्ति में गहराई कैसे लाएं? प्रभुपाद बताते हैं कि जीवन के लक्ष्य को हम शुद्ध कर सकते हैं अच्छे ढंग से श्रवण और कीर्तन करके। प्रभुपाद दो वर्ड यूज करते हैं, प्रॉपर एंड सफिशियंट हियरिंग, मात्रा में भी और गुण में भी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। प्रॉपर एंड सफिशियंट हियरिंग, सही ढंग से सुने और ज्यादा सुने। सही ढंग से सुनेंगे और ज्यादा सुनेंगे तब हमारे जीवन का लक्ष्य शुद्ध होगा। सुनने का अर्थ है अध्ययन भी करना। सही ढंग से पढ़े और ज्यादा पढ़े, सही ढंग से सुने और ज्यादा सुने, तो क्या होगा? तब हमें समझ में आएगा, अरे ये क्या मैं सोच रहा हूं। इस संसार में अगर कोई परिणाम हमारे अनुसार हो भी जाता है, जिसे हम जीत कहते हैं, तब भी वो अस्थाई है, और अगर हार भी गए तब भी अस्थाई है, तो उसका तो लाभ ही नहीं है। जीत और हार दोनों ही अस्थाई है, तो इसमें क्या लाभ? असली लाभ यह है कि भगवान की हम विशुद्ध भक्ति को प्राप्त करें, हर एक परिस्थिति में हम भगवान का स्मरण कर सकें। अब वृत्तासुर देखिए, राजा चित्रकेतु थे, भगवान से बातचीत करके आ रहे हैं और अगले क्षण असुर बन गए, इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा एक्सीडेंट। आप देखिए, कहां भगवान से भी वार्तालाप हो रही है, भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, भगवान के दर्शन, भगवान से बातचीत, और उसके बाद अगले क्षण उनको शाप मिल रहा है। भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया, भगवान के सेवक पार्वती माता से श्राप प्राप्त किया, दोनों ही परिस्थिति में वो प्रसन्न है। असुर बन गए, असुर बनकर नरभक्षी हैं, नरभक्षी क्या, देवभक्षी हैं, इंद्र को निगल लिया, फिर भी देखिए भगवान उनको भक्त मान रहे हैं। ये दिखाते हैं भक्ति की महिमा और भक्तों की महिमा कितनी गहराई है। तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को शुद्ध कर सकते हैं, सही ढंग से सुने और ज्यादा मात्रा में सुने, तो सही ढंग से श्रवण करें, क्योंकि अगर श्रवण ही ठीक नहीं है तो आगे कीर्तन क्या ठीक होगा, स्मरण क्या ठीक होगा। श्रवण ही नवदा भक्ति की शुरुआत है। तो श्रवण सही ढंग से सुनने का क्या अर्थ है? तो जो भी हम भक्ति का कार्य करें, अपनी बद्ध अवस्था के कारण हम हर कार्य भोगने की प्रवृत्ति से करते हैं, फ्रूटी मेंटेलिटी के साथ करते हैं, तो श्रवण भी हमारा फ्रूटी मेंटेलिटी के साथ होता है। आप सोचिए, बुरा मत मानना, हम जब कभी श्रवण करते हैं तो श्रवण करने से पहले जब हम भागवत कक्षा में बैठे हैं, किसी कक्षा में बैठे हैं, हम में से कितने लोग हृदय से प्रार्थना करते हैं, हम में से कितने लोग ये बैठकर सोचते हैं कि मैं भगवान और गुरु की सेवा के लिए यहां बैठा हूं। जो बेचारा वक्ता होता है वो घबराया होता है, वो खूब प्रार्थनाएं कर रहा होता है कि मैं संदेश को यथारूप दोहरा सकूं या फिर मेरी लाज बची रहे, आज मैं अपमानित होने से बच जाऊं, इतने लोग आए हैं निराश ना जाए, तो वो तरह तरह की प्रार्थनाएं कर रहा होता है, वो कुछ समय के लिए कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन जो श्रोता होता है वो आराम से बैठा है, देखे जी कौन वक्ता है, क्या बोल रहे हैं, देखो कोई सेवा की भावना से हम सुनने का प्रयास नहीं करते, इंजॉइंग स्पिरिट से सुनने का प्रयास करते हैं। और कोई बात पहले सुनी हुई है, अरे ये बात तो पहले सुनी हुई है, क्या कान बंद खट चलो, शरीर नहीं आत्मा बंद कर दो कान, ये प्रभु जी हमेशा यही बोलते हैं, ये बोलेंगे अभी अगले, देखिए अगला वाक्य ये बोलेंगे, बोल दिया देखा पहले ही बोल रहा था यही बोलेंगे, देखो तो हम श्रवण बंद। तो इस श्रवण से, इस तरह के श्रवण से भक्ति में गहराई नहीं आएगी। फिर क्या होगा, बिजनेस में थोड़ा उतार चढ़ाव हुआ सब कुछ बेकार, घर में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हुआ सब कुछ बेकार, क्योंकि अंदर गहराई नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं ऑरल रिसेप्शन, कर्णों के द्वारा कर्ण रंध्रेण कृष्ण को प्रवेश करवाओ, कथा के माध्यम से क्या हो रहा है, हम कृष्ण को हृदय में प्रवेश करा रहे हैं। और जब हृदय में कृष्ण कथा कोटि गंभीर, बहुत गंभीर है, बहुत गहरी है, तो जब कृष्ण कथा को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तब हमारी भक्ति में गहराई आएगी। इस एंजॉयिंग स्पिरिट में सुनेंगे कुछ हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। हम कीर्तन करते हैं भोक्ता बनकर, दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। दूसरों को इंप्रेस करना बहुत ही बचपना है, बचकानी हरकत है, लोवेस्ट ग्रेड, सबसे भक्ति की निकृष्ट श्रेणी, कि इस ढंग से मैं भक्ति करूं कि बाकी सब लोग इंप्रेस हो जाएं। लेकिन एक कनिष्ठ अधिकारी की यह मानसिकता होती है, इससे हमें ऊपर उठना है, ये भक्ति के लिए बहुत बड़े बाधक हैं। इससे ज्यादा देर तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्यों, उतार चढ़ाव आते ही हमसे माला छूट जाएगी या माला में रुचि समाप्त हो जाएगी। तो हम कीर्तन, जप, जप कैसे करते हैं, सेवा के भाव से। अभी हम पीछे चंडीगढ़ में गए थे तो पंचकुला में एक लेक्चर दे रहे थे, तो एक माताजी ने प्रश्न पूछा, मैं तो कृष्णा कॉन्शियस में इसलिए आई कि मुझे स्लोगन बड़ा अच्छा लगा, चैंट एंड बी हैप्पी। मैं दुखी थी, मैंने बोला चैंट एंड बी हैप्पी करें तो मैं चैंटिंग करके देखती हूं, तो मैं कुछ लग रहा भी आपको, कहीं ज्यादा परिवर्तन तो नहीं आ रहा। तो हमें जाना पड़ेगा, अगर हम जप इसलिए कर रहे हैं कि मैं खुश हो जाऊं तो कभी नहीं मिलेगी खुशी। खुशी आनंद का एक ही मार्ग है, वो कृष्ण के थ्रू ही आती है, एक ही रास्ता कृष्ण के द्वारा। अगर हम जप गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं देन यू विल बी हैप्पी, लेकिन जप अपने आनंद के लिए कर रहे हैं खोजते ही रह जाएंगे। हम लोग सेवन डे सेशन करते हैं, उसका पहला नाम है आनंद की खोज। अब जनता को भ्रमित करने वाला यह टॉपिक है, अगर आनंद की खोज करेंगे तो खोजते ही रह जाएंगे। अपने आनंद की खोज करना भक्ति नहीं है, अपने आनंद को हमें नहीं खोजना चाहिए, हमें हर परिस्थिति में गुरु और कृष्ण के आनंद के विषय में सोचना चाहिए। हमारे दुखों का, जब भी हम भक्ति करते हुए प्रसन्न नहीं है, आनंद में नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, अगर शांत नहीं है इसका मतलब हमारी मिश्रित इच्छाएं हैं। हमें लग सकता है नहीं मेरे दुखों के कारण कहीं बहुत विकट परिस्थितियां, आप नहीं जानते मेरे घर में क्या परिस्थितियां हैं। नहीं, अगर हम हर परिस्थिति में सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में बताया गया है, अगर हम सेवा करते हैं तो तुरंत भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन में हो जाते हैं और तुरंत हम सारे दुखों से निपटारा पा लेते हैं, और ऐसे आनंद परिस्थिति में हम और अच्छे ढंग से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो सेवा करते ही हमें आनंद की, आत्मा की खुराक केवल सेवा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जो भी करें भक्ति में, जो भी हम क्रिया कर रहे हैं उसमें हम देखें हमारे क्या मोटिवेशन है, क्या इंटेंशंस हैं, और उसको हम सेवा के भाव से करने का प्रयास करें। अक्सर हम लोग सेवा करते हैं तो एक फ्रूटी मेंटेलिटी क्या है, हम सेवा में आनंद ढूंढते हैं, ढूंढते नहीं ढूंढते, कभी सेवा तो कर रहे हैं सेवा में आनंद नहीं आ रहा, वो सेवा अच्छी अच्छी थी या पहले वाली सेवा अच्छी थी या जो सेवा आपने उनको दी वो ज्यादा अच्छी है, उसमें आनंद है। सेवा अपने आप में आनंद है, अगर हम सेवा में आनंद ढूंढ रहे हैं फिर से वही गलती कर रहे हैं। हम सेवा करते हुए ये मत सोचे कि मैं कैसा फील कर रहा हूं। अक्सर हम यही सोचते हैं, ये सेवा कर रहा हूं मैं कैसा फील कर रहा हूं। हमें सेवा के बारे में सोचेंगे तो ये फीलिंग चेंज हो जाएगी। शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में गए तो बहुत संघर्ष करना पड़ा प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद कई बारी वापस शिपिंग कंपनी में जाते थे और पूछते थे भारत के लिए वापस जहाज कब जा रहा है। लेकिन फिर उनको स्मरण आता था, नहीं मेरे गुरु महाराज का क्या आदेश है, और प्रभुपाद रुक जाते थे। तो हम जैसे जितना मर्जी भी हमें महसूस हो रहा हो, कैसा भी महसूस कर रहा हो, वो फीलिंग्स इतनी विशेष नहीं है। हमें जब सेवा के बारे में सोचेंगे अपने आप हमारी फीलिंग्स चेंज हो जाएंगे। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं कैसा अनुभव कर रहा हूं, इसका कोई महत्व नहीं है। भक्ति में जो हमें टेस्ट प्राप्त होता है उस टेस्ट से हम शुद्ध नहीं होंगे। सेवा के में हम टेस्ट ढूंढते हैं, टेस्ट ऑफ सक्सेस। प्रभु जी प्रचार करने गया, तुरंत 50 लड़के आ गए, हाँ अब मैं बहुत उत्साहित हूं। दूसरे दिन देने गया, 50 में से 2 रह गए, मायूस हो गया। जाओ प्रभु कॉलेज में प्रचार करो, नहीं वो कॉलेज ठीक नहीं है, वो फैसिलिटीज ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा। कहीं पर गए किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हम उदास हो जाएंगे। चाहे कोई हमारा अपमान करे, चाहे हमें तथाकथित सफलता मिले या ना मिले, हमें सेवा के बारे में सोचना है। सेवा में भक्त लोग सेवा की सफलता पर निर्भर नहीं करते, टेस्ट ऑफ सक्सेस पर निर्भर नहीं करते। ये बचपना है, छोटे बच्चे जब टूथब्रश करते हैं तो पिपरमेंट वाला चाहते हैं, खूब झाग हो, खूब पिपरमेंट हो, झाग दिखाई देगी, खुशबू आएगी तो बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो नीम से अपने दांत साफ करेंगे, कड़वा, लेकिन वो दांतों को असली साफ करेगा। झाग वाली टूथपेस्ट चाहिए या सुगंध वाली टूथपेस्ट से जरूरी नहीं है कि दांत साफ हो जाएं, मसूड़े शक्तिशाली हो जाएं, हो सकता है और कमजोर हो जाएं। लेकिन अगर कोई कड़वा नीम का टूथपेस्ट है जिससे गारंटीड है कि साफ होगा, तो निश्चित रूप से एक परिपक्व व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति वो टूथपेस्ट स्वीकार करेगा। तो सेवा करने से हम शुद्ध होते हैं, सेवा में टेस्ट ढूंढने से शुद्ध नहीं होते। अपने टेस्ट के बारे में ना सोचे, कृष्ण के टेस्ट के बारे में सोचे। प्रभुपाद गीता के आमुख में ही बोलते हैं, भगवद गीता का केंद्र बिंदु ही यही है कि अपनी इंद्रियों को तृप्त मत करो, कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करो। अपने टेस्ट के बारे में मत सोचो, कृष्ण के टेस्ट के बारे में सोचो। तो इन छोटी छोटी मुश्किल गलतियों के कारण हम भक्ति करते हुए भी आनंद में नहीं रहते हैं। सेवा करते हुए सेवा में आनंद ढूंढेंगे, जहां हम अपने सुख की आशा रखेंगे हम निराशा प्राप्त करेंगे। किसी भी क्रिया में क्यों ना हो, चाहे वो कर्मकांडी कार्य हो चाहे वो भक्ति हो, जहां अपने सुख की वासना रखते हैं हम निराशा प्राप्त करेंगे। सेवा का अर्थ ये नहीं है मैं जो करूं जैसे करूं जब मर्जी करूं क्योंकि मुझे पसंद है मेरी मर्जी, नहीं। सेवा का अर्थ है हमें गुरु के निर्देशों के अनुसार चलना है। इसके लिए हमें कड़वा घूंट भी पीना पड़े तो हमें पीने को तैयार होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ये हमें शुद्ध करेगा, इससे हम कृष्ण के और निकट आएंगे। ऐसी कोई भी परिस्थिति जो हमें कृष्ण का स्मरण कराए वो हमारे लिए बहुत शुभ है, और ऐसी परिस्थिति जो कि दिखने में ठीक हो लेकिन कृष्ण का विस्मरण कराए वो हमारे लिए अमंगलकारी है। देखिए शीला जीव गोस्वामी को श्री रूप गोस्वामी ने तिरस्कृत कर दिया कि तुम अब तुम्हारा अहंकार बढ़ गया है, तुम वृंदावन में रहने योग्य नहीं हो। जब उन्होंने वल्लभाचार्य जी को उनको करेक्ट करने का प्रयास किया तो जीव गोस्वामी जी चुपचाप छोड़कर चले गए। जीव गोस्वामी ने बोला चलो दूसरा मठ ज्वाइन कर लेता हूं, मैं कोई छोटा विद्वान थोड़ी हूं, बहुत बड़ा विद्वान हूं। जीव गोस्वामी को उनके गुरु ने तिरस्कृत कर दिया, बाहर निकाल दिया, सोचिए। और जबकि जीव गोस्वामी बहुत निष्ठापूर्वक अपने गुरु की सेवा में लगे हुए थे, कोई दंभ नहीं था उनमें, लेकिन गुरु गोस्वामी जी ने उनको तिरस्कृत कर दिया। तो जीव गोस्वामी गए चुपचाप नंदगांव में, यमुना की मिट्टी खाते थे बस। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी, षट संदर्भों की रचना कर दी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हम सिंसियर हैं तो हम कृष्ण द्वारा रिकग्नाइज कर लिए जाएंगे, मान्यता प्राप्त हो जाएंगे। तो जब ऐसी हालत देखी सनातन गोस्वामी ने तुरंत उनको पकड़ा और वापस रूप गोस्वामी के पास ले आए। अगर वो बोलते मेरा क्या कसूर है, मैंने तो रूप गोस्वामी के मान की रक्षा के लिए सब किया था और मेरे को ही निकाल दिया, ये कैसे गुरु हैं। मैं ठीक है, मैं भी बहुत से शास्त्र लिख चुका हूं, बहुत प्रखार पंडित हूं, दूसरे कितने ही मठ मुझे बुला रहे हैं, क्यों नहीं वहां चला जाता, चले जाते तो क्या दोबारा उन्हें रूप गोस्वामी का आश्रय प्राप्त होता नहीं। तो हर परिस्थिति में गुरु द्वारा तिरस्कृत होने के पर भी वो सेवा में लगे रहे। ऐसे ही प्रभुपाद जी के एक शिष्य तो नहीं थे, प्रभुपाद जी के अच्छे भक्त थे पीटर गुरुवाश, जो कि मैनेजमेंट में बहुत सी पुस्तकें लिखते हैं। इससे पहले वो बहुत बड़े टेनिस प्लेयर थे और उन्होंने प्रभुपाद का एक लेक्चर सुना कि हमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए। और टेनिस प्लेयर करते करते बहुत बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए और फाइनल मैच के फाइनल जैसे सर्विस चल रही है, लॉन टेनिस का मैच चल रहा है और उसी गेंद सर्विस के ऊपर पूरा गेम निर्भर है और पीटर गुरुवाश खड़े हैं, तभी क्या करते हैं, खड़े खड़े वो अपनी स्थिति बदल लेते हैं, गलत जगह खड़े हो जाते हैं। सारे के सारे दर्शक बैठे बोले कहां खड़ा हो गया, जहां एक खड़ा है वहां तो हार जाएगा, हार निश्चित है। टीवी में रेडियो में अलग अलग जो कॉमेंटेटर थे वो बोले क्या क्या स्ट्रेटेजी है इसकी, ये हार जाएगा, इतना अच्छा गेम खेल रहा है, वहां खड़ा होगा तो निश्चित रूप से इसकी जीत निश्चित है। लेकिन पीटर गुरुवाश उस स्थान को छोड़कर यहां खड़े हो गए और हार गए। बाद में सब उन्होंने पूछा, सब लोगों ने, क्या आपने किया, क्यों, अच्छा मैच चल रहा था, आप जीत रहे थे सब कुछ, क्यों ऐसा आपने किया। बोले क्या करें, जिस स्थान पे मैं खड़ा था वहां चींटियां थी, अगर मैं वहां खड़ा होता निश्चित रूप से चींटियों की हत्या हो जाती और ये हिंसा होती। मेरे गुरु शीला प्रभुपाद से मैंने सुना था किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करनी। आप बताइए, बाहर की दृष्टि से वो क्या हो गए, हार गए, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से क्या हो गए, जीत गए। इस संसार की हार जीत का कोई महत्व नहीं है, कितना प्रसन्न किया होगा उन्होंने शिला प्रभुपाद को, यह है सिंसियरिटी। शिला प्रभुपाद विदेश को जब 1922 में अपने गुरु महाराज से मिले, 40 वर्ष तक प्रभुपाद संघर्ष करते रहे, संघर्ष करते रहे, संघर्ष। प्रभुपाद का उत्साह कम नहीं हुआ, कितना अपमानजनक परिस्थितियों से प्रभुपाद को गुजरना पड़ा, नहीं, प्रभुपाद अपने गुरु का आदेश नहीं भूले। यह है भक्ति में गहराई, चाहे विफलता मिले चाहे सफलता मिले, हर परिस्थिति में एक भक्त को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और समझ लीजिए, हम बाहरी दुनिया में हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कर्तव्य के रूप में करें, इंद्र तृप्ति की इच्छा से नहीं। और सेवा भी हम कर रहे हैं, उसमें सेवा में अपने आनंद को ना ढूंढकर हम गुरु और कृष्ण के आनंद को ढूंढें। आसक्ति जहां होगी वहां चिंता होगी, वहां भय होगा, और हम सोचते हैं आज जिस विषय से मुझे आसक्ति है इसको प्राप्त करने के बाद शायद मेरी चिंता मेरे भय दूर हो जाए, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद हमारी भय हमारी चिंता और बढ़ जाती है। तो हर परिस्थिति में हम ये प्रयास करें कि हमेशा हम भक्ति में हर कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए ना करके गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। जिस ढंग से भक्त भगवान के भक्त बाहरी लाभ और हानि को ना देखकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, उस ढंग से भगवान भी बाहरी लाभ हानि को ना देखकर केवल भक्तों की प्रसन्नता के लिए प्रयास करते हैं। कोई उदाहरण है आपके पास कि भगवान भी अपनी रेपुटेशन की कोई चिंता नहीं कर रहे और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने अपना अपयश फैलाया? क्या रणछोर, चक्र उठा लिया, अपने जो उन्होंने वचन दिया था उसको तोड़ दिया अपने भक्ति रक्षा के लिए, और जरासंध के साथ युद्ध कर रहे हैं, युद्ध से भाग गए। एक क्षत्रिय का युद्ध से भागना कितनी बड़ी अकीर्ति है, लेकिन भगवान भाग गए। क्यों क्यों भाग गए? रुक्मणी देवी वहां पर प्रतीक्षा कर रही है, जो मर्जी दुनिया सोचे मेरा प्रेमी भक्त मुझे बुला रहा है, वो संकट में है, भागे। रणछोर, और रणछोर के नाम से उनकी पूजा होती है, मंदिर में कौन है रणछोर उनकी पूजा की जा रही है। क्या किया उन्होंने? रण को छोड़ के चले गए। क्यों ये महान हो गया? क्योंकि भक्त से प्रेम करने के लिए। और उधर रुक्मणी देवी को देखिए, रुक्मणी देवी छोटी सी किशोरी बालिका थी और बड़े बड़े दिग्गज शिशुपाल जरासंध उसका भाई रुक्मी इन सबके बीच में उसका विवाह शिशुपाल से हो रहा है। अगर चाहती तो बेचारी रुक्मिणी माता डिप्रेशन में चले जाते, है ना, हमारे संसार की होती है तो डिप्रेशन में चली जाती है, एकदम एकदम विकार है, क्या जीवन खत्म। लेकिन रुक्मिणी देवी पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर प्रयास करते रहे, बोले ठीक है, भगवान ने उनको बुद्धि दी, चलो दुर्गा माता के मंदिर में देखते हैं भगवान कब आएंगे। ब्राह्मण को भेज दिया, पूरा कार्य उत्साह पूर्वक किया। उत्साह में कमी आ जाएगी, हम लोग क्या करते हैं, कार्य उत्साह पूर्वक नहीं करते, परिणाम नहीं मिलता तो बोलते हैं भगवान की लीला है, भगवान की इच्छा है। हमें देखना चाहिए क्या हमने प्रयास पूरे उत्साह पूर्वक किए। रुक्मिणी देवी ने पूरे उत्साह पूर्वक प्रयास किए और कृष्ण पर निर्भर रही, अंदर चली गई, पूजा कर ली, वापस आ रही है, अभी तक भगवान नहीं आए, क्या क्लाइमैक्स हुआ होगा देखिए। बिल्कुल रुक्मिणी देवी चल के आ रही है, बिल्कुल अपने महल तक पहुंचने वाली, भगवान आए नहीं, वो सोच रहे हैं अभी नहीं पहुंचे तब मैं अपना शरीर त्याग दूंगी, शिशुपाल के साथ तो विवाह नहीं करूंगी, ये पक्का दृढ़ता है और कृष्ण पर निर्भर है। और तभी कृष्ण आते हैं और रुक्मिणी देवी को उठाकर चले जाते हैं। मैं रुक्मिणी कृष्ण दास हूं इसलिए कथा कह रहा हूं अपने इष्ट रुक्मिणी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो हम यहां देख सकते हैं भगवान ने भी अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं की, कहने तो दुनिया को रण छोड़ कोई परवाह नहीं, लेकिन रुक्मिणी देवी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो भाग कर गए भगवान, रण को छोड़कर। युद्ध में छोड़ना, युद्ध भूमि कितनी बड़ी इमरजेंसी आप सोचिए, एक राजा युद्ध भूमि में है, इससे बड़ी कोई इमरजेंसी हो सकती है एक क्षत्रिय के लिए, उसको छोड़ दिया एक भक्त के लिए। इसी ढंग से भक्त को भी बड़ी से बड़ी इमरजेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्या करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो प्रभुपाद यहां बता रहे हैं अगर हम निष्ठापूर्वक हैं, प्रभुपाद इंग्लिश में लिखते हैं इफ वी आर सिंसियर इन कृष्णा कॉन्शियसनेस देन विल बी रिकॉग्नाइज बाय कृष्णा। हमारी सफलता यही है कि हम सिंसियर होकर सेवा करें। अभी हम गुरु महाराज पीछे आए थे तो सब भक्तों से मिले, तो एक भक्त ने प्रश्न पूछा महाराज कि भक्ति में सफलता का क्या मतलब है, आध्यात्मिक जीवन में सफलता का क्या मतलब है। तो इस उन्होंने गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज ने उत्तर दिया आध्यात्मिक जीवन में सफलता का अर्थ है भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होना। हम लोग सेवा कर रहे हैं और सेवा करते हुए देखें कि हमारा हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है, सेवा किए जा रहे हैं लेकिन हरि नाम में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, सही ढंग से हम माला नहीं कर पा रहे, माला करते हुए निद्रा आ रही है, इसका मतलब हम सही ढंग से सेवा नहीं कर रहे हैं। भक्ति में सफलता कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट करना नहीं है, भक्ति में सफलता है सही चेतना में हम किसी ढंग से भगवान को प्रसन्न कर सके, उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े हम करने को तैयार हों, अगर ये हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित हो जाता है। तो अगर हम सिंसियर हैं तो कृष्ण निश्चित रूप से हमें मान्यता देंगे। तो एक बार हमने इस गेस गोपी प्राणधन प्रभु जब यहां आते थे तो उनसे प्रश्न पूछा सिंसियर होने का मतलब क्या है, क्योंकि ये शब्द हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, प्रभुपाद भी अपने तात्पर्य में बहुत लगते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन में अगर आप सिंसियर हो जाएं तो आपको महाप्रभु की कृपा मिल जाएगी, तो कृपा तो चाहिए महाप्रभु की, तो सिंसियर होने का क्या मतलब है। तो ये गोपी प्राणधन प्रभु जी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, उन्होंने बताया सिंसियर होने का अर्थ है टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होना, हम जो प्रचार करें उसको आचरण करने का प्रयास करें, हमारे विचारों में हमारे शब्दों में हमारे कार्यों में कम से कम भेद हो। निरंतर हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, अगर इस तरह का दोगलापन है तो हम इनसिंसियर हैं। ये इससे इतना महत्व नहीं है कि हमारे हृदय में कितने अनर्थ हैं, कितनी काम वासनाएं हैं, लेकिन अगर हम सिंसियरली ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं अपने आप को सुधारने का, ऊपर उठने का इनसे, तो हम निश्चित रूप से चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करेंगे। इन्होंने भक्ति विकास स्वामी महाराज लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में, इन दिस मोमेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, एवरीथिंग इज अलाउड एक्सेप्ट हिपोक्रेसी। इस महाप्रभु के आंदोलन में सबकी परमिशन है, सबकी आज्ञा है, पतित से पतित जीव को भी भगवान कृपा दे देंगे, लेकिन जो दोगला है, जो कपट का सहारा ले रहा है, उसके लिए कोई आशा नहीं है। तो हम लोग जो प्रचार करते हैं उसको अपने आचरण में उतारने का प्रयास करें, हमारे शब्दों में हमारे विचारों और हमारे कार्यों में कम से कम भेद हो, कम से कम गैप हो, और अगर हम सिंसियरली प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम महाप्रभु कृपा को प्राप्त करेंगे। और अपने भक्ति में अगर हम अच्छे गहराई लाने का प्रयास करेंगे, अपने जीवन के लक्ष्य को हम स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे, तो इस संसार के द्वंद्वों से हम ऊपर उठ जाएंगे, हमें देखना चाहिए कि कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, कृष्ण ही सब कारणों के कारण है, कृष्ण ही परम नियंता है, क्योंकि उन्होंने सृष्टि की, वही सृष्टि का पालन करते हैं, वही सृष्टि का संहार करते हैं, तो वही सब कुछ जानते हैं। हम केवल सिंसियर एफर्ट्स कर सकते हैं, तो जो भी हमें सेवा प्राप्त हो उसमें हम सिंसियर प्रयास करें। सेवा में अपने सुख की वासना ले आएंगे तो सब मिश्रित हो जाएगा। अपने सुख की वासना को दूर करके जो हमें बताया जाए जिस उसको हम करने का प्रयास करें, और इस ढंग से भगवान की कृपा पर निर्भर रहें। हर परिस्थिति में अगर निर्भर रहेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग भगवान के सामने खड़े होकर प्रार्थनाएं भी करते हैं, जब हम कुछ सुनते हैं हम प्रार्थना करते हैं कि हम दासों के दास बन जाएं, हम शुद्ध भक्त बन जाएं। निश्चित रूप से अच्छी बात है प्रार्थना करना, लेकिन केवल प्रार्थना करके हम परिणाम की अपेक्षा ना करें। भगवान देखेंगे आप जो कह रहे हैं उस दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। प्रार्थना के साथ साथ अगर उस दिशा में प्रयास नहीं है तो यह भी एक तरह का दोगलापन है। हम अपनी मेहनत करने से बचते हैं और सोचते हैं कुछ वर्ड्स बोल के, कुछ प्रार्थना गाएं के शायद हमारा काम हो जाए। सिंसियरिटी भगवान देखेंगे कि आप कितने हृदय से उस दिशा में प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिर निश्चित रूप से हमें कृपा भी प्राप्त होगी। तो वृत्तासुर इंद्र को कह रहे हैं कि मेरा वध कर दो ताकि मैं जल्दी से भगवतधाम वापस चला जाऊं। वो इंद्र को उकसा रहे हैं कि इंद्र को बोल रहे हैं तुम्हारे हाथ से व्रज छूट गया, इसका मतलब अब शोक में मत चले जाओ, ये समय शोक करने का नहीं है। कल के लेक्चर में प्रभुपाद कह रहे हैं जो भौतिक उतार चढ़ाव को में शोक करे वो शूद्र है, और जो सहन करे वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का कर्तव्य है कुछ भी क्यों ना हो जाए हम सहन करें। प्रभुपाद कहते हैं इफ यू कैनॉट बियर देन टॉलरेट, अगर आपके लिए असहनीय है, असहनीय है तो क्या करो, सहन करो। तो और कुछ नहीं, इस संसार के सुख दुख को हम केवल सहन करें और जो बड़ी समस्या है उनके समाधान में पूरी शक्ति को लगाएं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई टिप्पणी या कोई प्रश्न है? यस प्रभु जी। इसमें द्वंद, द्वंद का अर्थ है रिलेटिविटीज, है ना, मतलब कि सुख और दुख, जय पराजय, लाभ हानि, जो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। हाँ, ड्यूअलिटी ऑफ द वर्ल्ड, जो आध्यात्मिक जगत है वो एब्सोल्यूट है, वहां ड्यूअलिटी नहीं है, वहां केवल आनंद है, यहां पर सुख के साथ दुख मिश्रित है, क्योंकि प्रकृति के तीन गुण मिश्रित हैं। यहां पर आपको शुद्ध सत्व नहीं मिलेगा, जो सत्व गुण जिससे ज्ञान और आनंद उत्पन्न होता है उसमें रजोग और तमोगुण अवश्य मिश्रित होगा, यानी कि दुख भी होंगे ही होंगे। किसके देखो, ठीक बात है, सुख और आनंद में यही अंतर है, सुख और आनंद में यही अंतर है। सुख और दुख को सहन करना है, और आनंद हमें कृपा से प्राप्त होता है। आनंद आध्यात्मिक जगत में आता है, आध्यात्मिक सेवा में आता है। जब हम सेवा करेंगे निश्चित रूप से हम आनंद कृष्ण की कृपा से प्राप्त करेंगे, आनंद के पास जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी। सुख और दुख तो ये वैरी करता रहेगा, कभी सुख कभी दुख। ना सुख को महत्व दे ना दुख को महत्व दे, महत्व हम दे सेवा को। यस अमृत मंत्र को वही हमने चर्चा की कि भक्ति में दृढ़ता आएगी गहराई से जब हम अच्छे ढंग से और सही मात्रा में श्रवण करेंगे। अज्ञानता ही हमारे इसका लक्षण है, तो गहराई डिटर्मिनेशन आएगी, हम पूर्ण रूप से कृष्ण पर निर्भर रहें और अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें। जीवन का लक्ष्य देखिए, अगर हमें जाना है यहां से समझ लीजिए लुधियाना जाना है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है, रास्ते में ट्रैफिक जाम हो या फिर क्लियर रोड मिले तो क्या करोगे? दोनों परिस्थिति में ड्राइव करोगे। तो अगर हमें भगवत धाम वापस जाना है तो इस संसार में सुख भी हो दुख हो, स्पीड ब्रेकर्स भी आए या क्लियर रोड भी मिले, ट्रैफिक जाम भी मिले, हम सहेंगे, जाना ही अगर वहां पे है। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है तो छोटी बातें हम विचलित हो जाएंगे। यस माता जी,
आपने बताया कि ये मटेरियल वर्ल्ड हमें नित्य बद से नित्य मुक्त बनने के लिए किया गया, हमारे यहाँ पर इतने ज्यादा पाप करने की टेंडेंसी क्यों है? यहाँ पे हर चीज में इतने हमसे पाप क्यों होते हैं? अगर नित्य बद से नित्य मुक्त होने के लिए ही प्रोसेस है तो फिर ये पाप की पाप करने के लिए ही क्यों? लाइक एवरीथिंग हैज सम सेंस, जैसे हम अगर कुछ खा भी रहे हैं कुछ नहीं सुन रहे हैं।
तो माता जी का प्रश्न है कि फिर हर चीज इतनी पापपूर्ण क्यों है, हर कार्य में कुछ ना कुछ दोष है, भगवान ने गीता में बताते हैं। तो अगर नित्य बद से नित्य मुक्त है तो ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? लेकिन भगवान ने इस संसार की रचना बद जीवों की इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए है, और साथ में प्रोसेस दिया है, गुरु साधु शास्त्र दिए हैं। गुरु साधु शास्त्र के अंतर्गत रहते हुए हम कार्य करेंगे तो सभी पापों से बच जाएंगे। हर कार्य को हम सेवा में बदल सकते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर भगवान की सेवा के लिए नहीं करेंगे तो पापपूर्ण हो जाएगा, प्रत्येक कार्य भगवान की सेवा में लगा देंगे तो भक्ति हो जाएगा। तो गुरु साधु शास्त्र के निर्देशन में चलेंगे तो हम नित्य बद से नित्य मुक्ति अवस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, कार्य तो करेंगे ही करेंगे लेकिन चेतना बदलेंगे। यस पर
रुक्मणी प्रश्न, अभी आपने ये कहा है कि माता पहले, तो ये तो था हमारे भारत में तो नहीं, विश्व में तो ज्यादा इसलिए ऐसा हो सकता हूँ।
क्या मतलब?
सर ने मतलब पिता का पुत्र का नाम जो है अलग होता है, हरी माता का नाम पहले लिया जाता है, ऐसा क्यों?
माता का नाम पहले लिया जाता है, पिता का नाम बाद में लिया जाता है, तो वही तो कह रहे
भारत वर्ष के अंदर जो है
नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं इसमें नहीं होता है, जो हमारी प्रथा है कि पहले शक्ति का नाम लिया जाता है फिर शक्तिमान का। राधा राधिका रमन रुक्मिणी कृष्ण, पहले भगवान की शक्ति है और फिर भगवान है। ठीक है, चलो अंतिम प्रश्न बताइए।
हरे कृष्णा, प्रभु जी सबसे पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं आया तो था इस होलीनेस राधा गोविंद महाराज जी की कथा सुनने के लिए, और जब मैंने आपका प्रवचन आज पहली दफा सुना तो मुझे लगा कि आज भगवान कृष्ण ने मेरे को जितवा दिया है, हराया नहीं।
चलिए भैया, प्रभुपाद जी की कृपा है और राधा गोविंद महाराज की कृपा है।
तो सर्वप्रथम मेरे को, मैं हृदय से बहुत गदगद हो रहा हूँ, मैंने आपको इतने सालों में आज पहली दफा सुना तो अपने इतने साल मैंने व्यर्थ किए।
नहीं नहीं धन्यवाद।
एक छोटा सा प्रश्न प्रभु जी, आपने बताया सुख और दुख को सहन करें और आनंद भगवान से प्राप्त हो रहा है। इस समय मैं आपके समुख बैठा हूं और मुझे सुख भी प्राप्त हो रहा है और आनंद भी प्राप्त हो रहा है, तो इसको मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूं?
हाँ हम इतना एनालिसिस ना करें कि पैरालिसिस व एनालिसिस हो जाए। सुख है कि आनंद है, सुख है कि आनंद है। हमें अपने बारे में नहीं सोचना कि मैं समय सुख में हूं कि आनंद में हूं या दुख में हूं, ये नहीं सोचना। जो गोपियां भगवान की सेवा करती हैं उनके अंदर ना भौतिक इच्छा है ना आध्यात्मिक इच्छा है, कुछ भी नहीं है। गोपियां सेल्फलेस नहीं है, सेल्फ फॉरगेटफुल है, अपने बारे में भूली पड़ी है। तो हमें ये आनंद की खोज भी नहीं करनी, कुछ नहीं, ना सुख दुख आनंद से कुछ भी नहीं, हमें केवल सेवा करनी है। ये तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं तो आनंद मिल जाता है, गोपियां आनंद चाहती नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं इट इज इम्पोज अपॉन देम, जबरदस्ती मिल जाता है। तो हम ये ना सोचें ये सुख है कि आनंद है, कुछ हमें अपने बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। हम अक्सर अपने बारे में इतना सोचते रहते हैं, इतना सोचते रहते हैं कि कृष्णा कॉन्शियस की जगह सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, और जब सेल्फ कॉन्शियस होते हैं दूसरे के प्रति कोई सेंसिटिव नहीं है, दूसरों की सेवा क्या करेंगे जब अपने बारे में सोचेंगे। तो कृपया करके मेरे आपसे हम सबसे ये सोचें ना सुख आनंद, हमें इस बारे में चक्कर में नहीं फटना। लेकिन फिर भी थ्योरेटिकली अगर हम चर्चा करने चाहें तो सुख और आनंद में ये अंतर है कि सुख टेम्परेरी होगा, सुख परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कंडीशनल, लेकिन आनंद अनकंडीशनल है, परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, ग्रंथ राज श्रीमद भागवतम की, राधा गोविंद महाराज जी की, निताय गौर प्रेमानंद है।